বাংলা আগে শুদ্ধ হবে না আমার, অশুদ্ধ বাংলা হলে চলবে, এমনি অশুদ্ধ, শুদ্ধ তো কিছুই নেই। তো আপ লোক সবসে ভাগ্যশালী হে, কিন্তু আপ যে ভারতবর্ষ মে সপ্ত মুখ্য দায়িনী পুরি হে, মুখ্য প্রদান করনে বালি সাত স্থান হে, ইনমে সে এক হে অবন্তীপুরী, জিসমে আপ লোক বাস কর রহে হ্যাঁ ওর সাধনা কর রহে হ্যাঁ। কোন বতা সকতে হ্যাঁ সাত পুরিও কা নাম ভারতবর্ষ মে যে সপ্ত মুখ্য প্রদানী পুরি হে? তো এমনি সে অবন্তীপুরী এক মুখ্য দায়িনীপুরী হে, এতে यद्यपि आज जैसे सुन रहे थे अमृत का भी बिंदु पात हुआ था, इसलिए यहाँ लगभग 12 साल में एक बार सिंहस्त जब सिंह राशि में श्री जाते हैं तो यहाँ अमृत योग लगता है, कुंभ मेला होता है, अनेक अनेक साधु संतों का समावेश होता है। क्षिप्रा नदी बड़े पवित्र माना जाता है, यद्यपि आज पानी नहीं रहा आजकल उसमें, लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव है, लेकिन फिर भी जुग जुग से उनका कीर्ति रहा पिपरा का, और स्थान का बड़े प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, उनके भाई भर्तृहरि, आप सुने होंगे नाम भर्तृहरि का, गुफा देखा ना आपने, देखे ना, अरे उज्जैन में रहते नहीं देखे आपने क्या? ये भर्तृहरि महाराज का राज्य है, उनका राजधानी इधर है, आजकल तो रहा नहीं। भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, तो उनमें चक्रवर्ती सम्राट थे, ये तो जगन्नाथ जी को प्रकट कराने वाले जो महाराज इंद्रदुम्न, वो भी यहीं के राजा थे, यहीं से छोड़कर चले गए थे, सपरिवार पूरे राज्य प्रजा लेकर चले गए थे लाचल में। तो उनके बाद में चक्रवर्ती सम्राट रहे थे भर्तृहरि जी, वो तो कोई ज्यादा, इंद्रदुम्न महाराज तो कल्प पुराना है, लेकिन भर्तृहरि महाराज तो आज से लगभग कोई 2,500 साल पहले का पुराना है, ज्यादा नहीं। कभी उनके जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, जिनका सिद्धि था, जिनने बेताल सिद्धि कर रखे थे, तो बत्री सिंहासन के कथा सुने होंगे, बत्री सिंहासन उनको मिला था। तो ऐसे कथा है कि भर्तृहरि महाराज के राज्य में एक बड़े सिद्ध थे, जिन्होंने अपना साधना से एक सिद्धि फल उनको प्राप्त हुआ था, एक फल, तो उन्होंने इस फल का विशेषता उनको पता चला कि जो फल को सेवन करेगा तो सदा नवजीवन रहेगा, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। तो वो बाबा जी ने सोचे कि ये फल को मैं क्या खाऊं, मैं इस शरीर में तो रहना ही नहीं, मुझे तो भगवत धाम जाना है, यहाँ ज्यादा मैंने इस शरीर को रख कर मैं क्या करूँ बहुत ज्यादा दिन तक। तो बोले से किसको दूँ किसको दूँ, बोले हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी इतने सुंदर प्रजान रंजन राजा है, अगर वो ज्यादा दिन रहेंगे, हमारे राज्य के जनता प्रजा सुखी रहेंगे, तो उनको ज्यादा दिन रहना चाहिए, बलशाली रहना चाहिए, सतेज रहना चाहिए। तो ऋषि जी ने राज दरबार में आकर के इस फल की महिमा को बताए और इस सुंदर फल को राजा को दिए, बोले राजा इसको सेवन कीजिए, सेवन करने से आप निरोग रहेंगे और युवक रहेंगे और आपके बुद्धि वगैरह सतेज रहेगा, बड़े सुंदर राज्य शासन कर सकते हैं, प्रजा बड़ा सुखी रहेंगे, पूरे जनता का हित होगा, कल्याण होगा, आप ठीक रहने से सब ठीक होगा, तो इसलिए आप फल को आप सेवन कीजिए, ये मेरे तपस्या का फल है। तो सारे सभासदों के सामने महाराज भक्त हरि ये फल को स्वीकार किए, इसी से स्वीकार करके बहुत प्रसन्न हुए, सोचे कि अगर मैं उसको खाऊं तो मैं बहुत दिन तक जवान रहूंगा, निरोग रहूंगा, बलशाली रहूंगा, लेकिन राजा के अनेक पत्नी थे, उनके जो सबसे छोटी पत्नी थी, छोटी पत्नी थे तो उनके प्रति राजा का मन बड़ा आकृष्ट था, तो राजा सोचे अगर वो बूढ़ी हो जाएगी तो मैं जो रह कर क्या हूँ, मैं तो आनंद इतना नहीं मिलेगा, मैं जो आनंद उनसे प्राप्त होता है, तो मैं युवक रहूंगा वो बूढ़ी हो जाएगी तो फिर काम नहीं बनेगा, तो बैठे ही कर वो युवती रहे, मैं तो इसे राजा हूँ अपने सामर्थ्य में, जब तक रहूंगा तो आनंद रहूंगा, ऐसे सोच करके तो उन्होंने फल को लेकर के अपने जो छोटे रानी उसको रात को लेकर खूब समझाए, उसको फल का महिमा समझा कर बोले, तो रानी ने बोले अवश्य मैं इसको दूंगी और अर्पण करूंगी। तो उन्होंने सोची एक्चुअली उनका इच्छा उस राजा में नहीं था, उनमें दुष्चरित्र दुष्चरित्रा स्त्री थी छोटे रानी, तो राजा को तो कुछ बोल नहीं सकती, राजा को तो शादी की थी, लेकिन उनका रुचि उनके मन उस राजा के जो घोड़शाला था अश्वशाला उसके जो इंचार्ज थे उनके साथ उनके संबंध था, तो उन्होंने सोचा अगर वो नहीं रहे मैं तो राजा के साथ, राजा के तो अनेक रानी है, काम है क्या, मुझे बहुत पसंद करते हैं राजा, वो ठीक अलग बात है लेकिन मैं तो पसंद नहीं करता करती हूँ, मैं तो उनको पसंद करती, अगर वो ठीक रहे तो मैं खुश रहूंगी। तो उन्होंने राजा के साथ अभिनय करके फल को तो स्वीकार कर ली, और दूसरे दिन राजा जाने के बाद लेकर के उनको फल के महिमा बताए, जो अश्वशाला के जो इंचार्ज थे उनको बताए और उनको फल दिए, बोले आप उस सेवन करें, आप अगर युवक रहेंगे, बलशाली रहेंगे, सतेज रहेंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, हम दोनों का संबंध रहेगा, तो ऐसे सोच करके उनको लेकर के फल दिए। तो हुआ था क्या, बड़े अद्भुत है ये सृष्टि, वो जो अश्वशाला के जो इंचार्ज थे तो उनका भी संबंध उनसे नहीं था, वो तो राजा के छोटे रानी, अगर उनको कुछ गड़बड़ करे तो एक्शन ले लेगी, कुछ भी कर सकती है, आजकल स्त्री के सामने तो सारे नियम भी उनके सपोर्ट में है, वो कुछ भी कर दे बिना कोई विटनेस में कैसे हो जाएगा, तभी से ऐसे चल रहा था। तो उनके डर के मारे जैसे वो स्त्री बन रही थी ऐसे बर्ताव कर रहे थे, लेकिन उनका इच्छा और किसी वैश्या से अनुरक्त था, उनका मन और किसी वैश्य का अनुरक्त था, तो वो मन में सोचा कुछ नहीं, बोले रानी को वहां करके उनको प्रसन्न करके और दूसरे दिन फल को लेकर के दूसरे स्त्री को दिया, जो वैश्या चरित्र की थी, और वो वैश्या ने भी वो बहुत बड़े संपत्तिवान थे, अश्वशाला के इंचार्ज थे राजा के, बहुत बड़े डिपार्टमेंट हेड थे, उनसे बहुत धन मिलता था, इसलिए धन के कारण उनके प्रति प्रसन्न होकर थे, लेकिन उनके प्रति उनका सचमुच आसक्ति नहीं थी, और दूसरे को पूरा पूरे परपुरुष के प्रति आसक्त थी, तो उन्होंने भी उनके सामने उस फल को स्वीकार की महिमा सुन करके, तो उसको फल को लेकर के जिससे आसक्त थे वो पुरुष को दिए, और वो पुरुष भी उनसे आसक्त नहीं थी, वो भी कोई दूसरे वैसे आसक्त थे, मैंने जो चालू वैसा ऐसे तो इतना धनिक नहीं थी, धन नहीं था, वो साधारण रोड साइड में जो मैंने जनरल वैसा कोई है उनके प्रति आसक्त, उनके प्रति उनको लेकर के दी, कितनी बार ट्रांसफर हो गया हफ्ता दिन में, तो वो जो ईश्वर फल की महिमा सुन करके और दूसरे दिन सोचने लगी, इतने सिद्ध फल है, इतने बड़े महिमा है उसका, और वो मुझे ला कर दिए, मैं तो दुश्चरित्रा हूं, दिन भर रात भर दूसरे का रास्ता देख रहा हूं, कौन आएगा कमाई होगा, इस शरीर को बेच करके मेरा रोजी रोटी चल रहा है, इतने कलंक के लिए पापी नहीं है दूसरे चरित्र। इस शरीर को मैं अगर ज्यादा निरोग और सबल रखूंगी तो पाप ही इकट्ठा करेगी, तो पाप आपके द्वारा पैसी भर चुकी है और ज्यादा पाप के लोड तो भरेगी। जितनी जल्दी मर जाए शरीर तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊं, उसको अगर ज्यादा दिन बचा के रखेंगे तो और ज्यादा पाप बढ़ेगी, दुख और भोगना पड़ेगा, ये अच्छा तो नहीं। ये सद्बुद्धि वहां से उनको आई रोड साइड वाले एशिया को, तो उन्होंने सोचा फिर इतनी बड़ी महिमा जो तो सिद्ध फल है उसका तो सदुपयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन्होंने वही सोच विचार करके एक दो दिन लगा करे किसी बड़े सज्जन से सलाह भी की, तो उन्होंने बोले देखो राजा है बड़े सज्जन पुरुष, अगर राजा के फल भक्षण करे तब सारे प्रजाओं का कल्याण होगा, जनता के कल्याण होगा, एक व्यक्ति से पूरे देश ही का हित होगा। तो ये बात को सोच कर वास्तविक मैं जैसे निकृष्ट व्यक्ति के क्यों राजा को ही सतेज और सदा और निरोग होना चाहिए, राजा के होने से प्रजा को कल्याण होगा। सोच करके दूसरे दिन दरबार में गई, दरबार में जाकर फल की महिमा बजारा मंगल की, राजा तो पहले सुने सभासद सब सुने थे, पुनरावृत्ति हुआ कुछ दिन 15 दिन बीत गया था उसके बीच में, पुनरावृत्ति हुआ राजा ने बड़े आश्चर्य होकर सारे सभासद मंत्री परिषद सब आश्चर्य लोग देख रहे थे सुन रहे थे, तो भी फिर था वो कि दूसरा कोई आ गया क्या, दूसरा कोई आ गया, सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे सुन रहे थे। बाद में राजा फल को लिया, लेकर के पूछा फल तुझे कहां से मिला, राजा को अभी डाउट हो रहा था, सारे सभासद को समझ था कि हो ना हो कोई दूसरा सिद्ध फल मिलेगी, एशिया को कैसी सिद्ध मिलेगी फल मिल गया, ऋषि ने सिद्ध थे उन्होंने वेल इतनी दी तो हमको पूरे सबका सामने ये सिद्ध फल आपको मिला कहां से। तो राजा के सामने सत्य बता दी, बोले आप तो जानते हैं मैं तो वैश्य हूं, स्टाम्प मेरा मतलब ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है सब मालूम है, ऐसा कोई लुचा छपा का बात नहीं है, तो मुझे कोई ग्राहक नहीं दिया, हमारा कई ग्राहक हैं, किसी ग्राहक ने मुझे दिया जो ज्यादा मेरे प्रति आसक्त हैं, कोई कोई ग्राहक ने मेरे शरीर को सुखी और निरोग और जीवती रखने के लिए किसी ग्राहक ने फल मुझे दी सिद्ध फल, ना कौन ग्राहक है उनका आईडी दे एड्रेस दो तो दे दी, उनका कल उनका था ज्यादा संबंध था उनको दे दी, तो उनको तुरंत कल किया राजा ने संबंध बैठा, तो बोला राजा बुला रहे मुझे अडर के मेरे आया क्या बात है। एक गृहस्थ था उनकी पत्नी भी थे लेकिन उनके पति छोड़ करके उनके पास आता था उनकी पत्नी, तो बोले क्या है तुझे कहां से मिला, डर डर के राजा जी माफ कीजिए मुझे तो उनने दी थी, एक स्त्री की बात बताया वो बड़ी वेश्या है, हाँ वो तो बड़े बड़े ग्राहक उनके पास आते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, बंबई कलकत्ता महानगर वाली है, हम तो सब चालू नगर के हैं, महानगर की वेश्या है महावेश्या है, तो उनको फिर सवन किया गया, तो उनको भी राज सभा में हाजिर हुआ, तो उनको जो राजा ने पूछा कुटेश्वर के सामने तो भी डर गई, उन्होंने बताया कि महाराज बात ऐसा है और मुझे मैं कहां से मेरा तरफ से आया ऐसा नहीं, मुझे मिला था किससे आपके अश्वशाला के जो इंचार्ज उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने मुझे दिए थे, उनको कहां से मिला, ज्यादा से ज्यादा संदेह सब पढ़ रहे, एक एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ सब संदेह के मारे कैसे सब देख रहे हैं, सब कहो बिल्कुल आश्चर्यचकित आंख निकल पड़ा है कैसे उनके पास भेजा, उनको कैसे मिला, राजा भी आश्चर्य के समुद्र में डूब जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, वही तो नहीं है जो मैं मेरे छोटी रानी को दी थी दिया था, वो फल तो नहीं है, वह कोई दूसरा है, महिमा तो सेम है दिखने में तो सेम है, रूप रंग गुण तो समान लगता है। तो जब अपना राज पार्षद अश्वशाला के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके जब आ गया तो उनका थोड़ा संदेह और ज्यादा ही बढ़ने लगा, उनको पता नहीं था ये क्या सब संबंध चल रहा है, तो वो तो नहीं बोल रहे थे, जब मृत्यु दंड का आदेश होने लगा कि सच बताओ नहीं तो गला काट दिया जाएगा, तो डर के मारे बहुत पैर पकने लगी, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि इतनी जो खबर उन्हें कल चला था छोटे रानी को भी उनके गुप्त चरण में दासी ने खबर दे दी थी, उनके संबंध जिसके घुड़सवार के पास था उनको जब तलब हो गया राजसभा में कोर्ट से उनके पास समन आ गया और कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, तो भाई उनके जो छिपे रिश्तेदार की पत्नी होगी उनकी तो चिंता होगी ना, जो उनके शरीर को निरोग सबल रखने के लिए इतनी शिद्दत हनी देगी राजा से जिसका मन है उनसे मन रिछा हुआ है, तो वो कैसे चिंतित नहीं होगी। तो आप कर छिप करके सब सुनती थी देखती थी, और देखिए उनका विकल अवस्था होने लगा, रोज कुछ कहना दे रही बताना देगी क्या करेगी, लेकिन नौबत ऐसे आएगी बताना ही पड़ेगा। राजा तो बिल्कुल बंद घर हो करके डांटने लगी, तो चारों ओर देखा, देख करके उन्होंने बोला जो भी होगा नहीं बताऊंगा तभी मरूंगा, बताऊंगा तभी मरूंगा, मरना तो इसी है, तो राजा के हाथ से मरना तो अच्छा है, रानी की वेश्या के हाथ से मरना से तो ये अच्छा है, ये दुष्चरित्र के हाथ से क्यों मरू, वो तो मरवा देगी इसी कोई गुन्नत में लगा के मरवा देगी कि क्या करेगी, खुद आके कत्ल कर देगी पता नहीं, इससे तो राजा के हाथ में सब पारिशतक पार्षदों के सामने मर जाना और अच्छा सत्य कहकर मरू, तो सत्य भाषण कर दी। वैसे ऐसे राजा बुराना माने आपके जो छोट पाट रानी है कनिष्ठ पाट रानी वो हमसे संबंध रखते हैं और हमारे पास आते हैं, उन्होंने मुझे फल दिए थे, बाप रे बाप वो सब खुल गया। आप राजा तो क्रोध से अंगार बन गए, जलने लगे, अच्छा जिस सिद्धि फल को सभी के सामने मुझे दिया गया था, मैं नीच निर्लज बेशरम उसको लेकर के इस दुष्चरित्र स्त्री के प्रति आसक्त होकर मूड, मैंने इतना मूड हूं लेकर उनको दे दी, किसी को नहीं बताया, सारे मंत्री संतरी जंत्री पार्षद सब बोले महाराज आप उसको बकलने के थे, महर्षि के कृपा फल को आप ही बकलने के थे ना, मेरा बुद्धि भी कंडम हो चुका, मैं ये काम वाण से फंस करके स्त्री की माया से फंस करके उसके सुंदर रूप से फंस करके मैं भी इस ऋषि प्रदत्त सिद्ध फल को भी उनको लेकर दे दिया था, उनको लेकर दिया था। अब इस शानदारी में देखिए कैसा मेरे पति, मैं जिनके प्रति सब कुछ राज्य के सब प्रजाओं का कल्याण भी चौपट करके दूसरी ओर से उनको प्रेम के प्रति उनके काम के प्रति आसक्त उनको लेकर सिद्ध फल देवी ऋषि की कृपा को उनको दे दी, दुष्चरित्रा स्त्री चंदारी ने मुझे कोई कदर नहीं है, इसी के लिए इसको गिर दिया, हर धन्य है विधि के विधान, और वो भी उनके प्रति आसक्त नहीं, वो भी लेकर और किसी को दे दिया और भी उसके दिया वो भी उनके प्रति आसक्त, इतने महा महिमामय इतने पावरफुल फल, ये दुनिया कैसे चलता है, ठाकुर जी के बड़े गजब रिश्ता है। अरे जो जिसके प्रति पूरे देश के ताव लगा करके उस रानी के प्रति राजा ना आ सकते, उस राणी राजा से आ सकते नहीं और किसी के प्रति, वो राजसभा के पूरे राजा का सबसे मान्य गण्य पात्र रानी छोटी पात्र और वो एक घोड़सवार के प्रति आ सकते, घोड़सवार ने और किसी के प्रति और किसी के प्रति सात घाट में उतर गया। ये क्या है दुनिया के काम के संबंध में इतने लोगों को भावना देता है, धन्य है काम सचमुच, किसी का ये जो आंख है ये फूट जाए अंधा अगर हो जाए तो फिर भी हाथ पकड़कर चल लेगा जी जाएगा कुछ बात कर सकता, लेकिन वो आंख खुला है लेकिन काम के ग्रसित होकर जो अंधा हो जाते कामान हो जाते हैं वो सचमुच कई गुना ज्यादा पतित हो जाते हैं, उनको तो कोई उच्चे नीच आचार विचार सब खो बुद्धि ही खराब हो जाता है। भगवान ने भगवद गीता में आठ सीढ़ी बताए, रूप गोस्वामी ने भक्ति समय सिंधु ने आठ कौड़ी बताए, रूप गोस्वामी ने बताया कि हम अगर भगवत धाम पहुंचेंगे भगवत प्रेम तक जाना चाहते हैं तो आठ सीढ़ियां हैं, सूर्याधिपत श्रद्धा से जानते हैं क्या क्या स्टेप है, गुड ये आठ कदम है, ऐसे चढ़ चढ़ करके प्रेम तक जाते हैं श्रद्धा से प्रेम तक, ठीक ऊपर चढ़ने की जैसे सात सीढ़ी है नीचे उतरने की आठ सीढ़ी है, आठ सीढ़ी है जानते नहीं, ये भगवद गीता में दूसरा अध्ययन हाँ वही ध्यान से शुरू होता ध्यायते विषय अनुपुंसा ध्यान वाद संग से सुप संग करने का इच्छा होगा संग से सुप संगात काम और कामात क्रोध क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहात गया श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात खत्म और कुछ नहीं है। प्रणश्यत है ना, वो सत्यानाश करने के लिए और सीढ़ी नीचे उतरने के लिए भी है ना, उसको आप ध्यान नहीं देखते हैं, वो भी पतन होने के लिए। तो वो जो पतन का सीढ़ी का पहले, जैसे भक्ति ऊपर उठने के लिए सबसे पहले कदम सीढ़ी क्या है, श्रद्धा, और पतन होने के लिए सबसे पहले सीढ़ी क्या है, चिंता, ध्यान करना, सोचना। अब हम सब पुरीवासी, अवंती पुरीवासी ब्रह्मचारियों को निवेदन करते हैं करवट धो करके इस सोच से बच के रहे, यानी सोच है कि इसी महामारक रोग है, और काम विकार के सोचना जब आ जाता है तो धड़ाधड़ एक स्टेप बाय स्टेप उतार लगा आपको, और फिर फ्लाट करके छोड़ेगा सत्यानाश करके, कोई विचार बुद्धि सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ एक बाय वन स्टेप बाय वन स्टेप खत्म होते चला जाएगा, है ना। और वो शुरुआत कहां से होता है, संग से, ध्यान कर संग करते, जैसे संग वैसे रंग, वही चिंता से होता है। तो इसलिए संग से बड़े सावधान रहना चाहिए, ऊपर बढ़ने उठने के लिए भी संग चाहिए, नीचे गिरने के लिए भी संग चाहिए, संग के बिना ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, पैर बटन दबाकर रहेगा, कुछ नहीं बढ़ सकते, बिना संग के रंग नहीं चढ़ेगा, ऊपर के लिए नीचे के लिए कहीं के लिए। तो संग आवश्यकता है, तो कैसा संग करेंगे ये छूट भगवान ने हम सभी को दिए, इतनी ही स्वाधीनता भगवान ने हमको दिया, बाकी तो हमारा आप पहचान होता है बद्ध जीव के नाते, बद्ध जीव का फिर स्वाधीनता कैसा, जिनका परिचय से भी बंधे हुए उनको तो बद्ध जीव कहते ना, जो बंधे हुए बद्ध जीव फिर स्वतंत्र कैसा, कोई स्वाधीनता कोई स्वतंत्रता नहीं है ना, इसलिए हम कंडीशन कहते हैं, कंडीशन सोल का फिर स्वतंत्रता क्या रहेगा, स्वाधीनता कैसे, कोई स्वाधीन नहीं है, हर कर्म प्राणी है, लेकिन थोड़ी सी स्वाधीनता दिए है किसके बारे में, सोचने के बारे में, सोचने के लिए जितना मर्जी सोच लो, घर बैठे कोई पैसा खर्चा नहीं कर, इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं, पैसे ना उतारने नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे सपने देखते रहो, दिन में ना तुम देखते रहो खूब, है ना, मन को जहां जहां लगाना ले जाओ, वही मनोकल्पना, मानसिक चिंतन, मानसिक ध्यान, सोच विचार, इसी के ऊपर स्वाधीनता भगवान ने हम लोग को दिए। लेकिन ये मत समझो सोचने के लिए, चिंता करने के लिए, ध्यान करने के लिए स्वाधीनता, उसका मतलब काम नहीं बन जाएगा ना, उसके ऊपर रोक है, आप जो प्लानिंग करना है कर लो, जो बनना है वही बनेगा, आपको प्लानिंग से कुछ नहीं बनने वाला है आप विचार करते रहो, होने वाला कुछ नहीं है, अंत में सोच सोच कर छोड़ देंगे, नहीं अंगूर तो खट्टा है, हम नहीं चाहेंगे, फिर इसको ऐसे हो जाएगा, है ना, जो हरि चाहेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पतित कर डालेंगे, होने तो कुछ नहीं होगा लेकिन होगा इतना हमारा ही पतन और संभावित हो जाएगा, वही ध्यान से, वही संग से, है ना। तो ये अवंतीपुर का एक घटना जो भगवान कृष्ण से संबंध है ना, अवंतपुर की महानता इसलिए कि हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे, किस लिए आए थे, स्टूडेंट बनकर आए थे, तभी तो आईआईएफ चल नहीं रहा था, स्टूडेंट पिचिंग नहीं हो रहा था, स्टूडेंट पिचिंग हम किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए ना, अरे कृष्ण है उनको कौन पिचिंग है कृष्ण हम कृष्ण आकर के इधर जो दो महीना तक जो किए उसी को सुन करके हम पीछ भी हो जाना चाहिए, उन्हीं की लीला के द्वारा ही हम लोग सब आकर्षित होंगे, पीछे होंगे, उनकी लीला के श्रवण ही हमारा ध्येय वस्तु होना चाहिए, है ना। तो भगवान ने जो जन आए आने से पहले भगवत संबंध से ही संबंधित हो चुका था, क्यों, क्योंकि भगवान के पिताजी वसुदेव, उनके जो सात बहन थे उनमें से एक राजाधि देवी, वसुदेव की बहन मतलब भगवान की बुआ का विवाह यही हुआ था, और जनक राजा के साथ, और यहाँ के पट्ट महिषी थे, भगवान की बुआ और जनक की राजरानी थी, उनका नाम था राजाधि देवी, वसुदेवी के बहन थे राजाधि देवी उनके। तो उनके दो बेटा और एक बेटी थी, उनका नाम था बिंद और अनुबिंद, उनके दो पुत्र का नाम था और बेटी का नाम था मित्रबिंबा। तो एक राज्य संग्राम में, युद्ध में, सम्मुख युद्ध में पति वीर गति को प्राप्त किए। तो राजाधि देवी पति के साथ सती होने के लिए मनस्थ तो की थी, लेकिन सती नहीं हो पाई क्योंकि वो अभी शिशु थे, दो कुमार और छोटी बेटी थे और छोटी थी, वो बिल्कुल गर्भवती थी कभी, और दो छोटे छोटे लड़के थे और बेटी इनका गर्भ में थी। इस अवस्था में सती होना शास्त्र विरुद्ध है, तो सती नहीं हो पाई। तो पति के वियोग के बाद स्वयं उज्जैन के राज शासन के डोरा अपने हाथ में पकड़ ली, स्वयं शासनकर्ता बन गई। क्षत्रिय रमणी है तो शासनकर्ती बन करके और शासन करने लगी। तो कुछ दिन के बाद हमने सब सुनी थी उनके भाई के जो लड़के हैं कृष्ण और बलराम के बारे में, खूब सुनी, खूब सुन सुन करके उनके मन में हृदय कन्न भर चुका है, अब देखने के लिए बहुत उत्साह, बड़े उमंग मन में आता था, लेकिन कोई चांस नहीं मिला था। लेकिन जब पता चला कि कंस को मार करके, उग्रसेन को राजा करके, माता पिता को वसुदेव देव की करा से मुक्त करके, अब उनका ये संस्कार मतलब सेकंड इनिशिएशन हो चुका है, अब ब्राह्मण बन करके, दिव्य बन करके, अभी जब यहाँ थे वृंदावन में तो पढ़ाई लिखा था ना, कोई स्कूल ना कॉलेज चर्चा भी कुछ नहीं हुआ, वहां तो गौशाला है, बछड़े के साथ बछड़े के पीछे घूम, घर गाय के पीछे घूम, चरवाहा थे, तो ग्वाला थे, रखालवाल थे, रखालवाला। अब जब वृंदावन से मथुरा आए तो क्षत्रिय वालक बने, राजपुत्र बने, राजपुत्र तो पढ़े लिखे तो होना चाहिए, ऐसे अनपढ़ गवार कैसे बने? तो पढ़ेंगे, अब बड़े बड़े होंगे, 11-12 साल की उम्र होगा, तो पढ़ने के लिए तो 4-5 साल में केजी से एडमिशन कर लेना चाहिए, 12 साल में तो कम से कम क्या बोलता ट्वेल्थ बोर्ड पर आसन होगा, तो हर सेकंड में हो जाता है, तभी जाएंगे आवाज सीखने के लिए, शर्म की बात है। तब लेकिन वसुदेव देव की सोचने लगे, बाकी से बोले राजपुत्र है, उनका भी संस्कार किया गया, विधि संस्कार हुआ तो हमको तो विद्या अध्ययन तो करना चाहिए, गुरु ग्रहण तो करना चाहिए, लेकिन कहाँ करें, यहाँ आसपास में जो स्कूल में एडमिशन कराएंगे बड़े अपमान होगा, ऐसा ही होंगे, देखो इतने बड़े बड़े लड़के अभी आ रहे हैं था सीखने के लिए, आ रहे हैं। तो बोले नहीं, उनको भी खराब लगेगा, सब उनके संग साथी उनका क्या कहेंगे उनको। तो बोले थोड़ा दूर भेजते हैं, दूर का भेजे अच्छा कॉलेज ढूंढे, अच्छा कॉलेज ढूंढने से सबसे बड़े अच्छे कॉलेज था यहाँ, महर्षि सांदीपनी सर्व विद्या विशारद थे, काशी विश्वनाथ की कृपा से वे तत्कालीन भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर थे, सारे विद्या में पारंगत थे, सर्व शास्त्र वेद उपनिषद में निष्णात थे, उन्हें काशी में रहते थे, लेकिन काशी में कुछ गड़बड़ी होने लगा तो यहाँ से छोड़कर यहाँ आ गए, महाकाल भी यहीं है, वहीं आ करके रहे और रह करके अध्यापन करते थे, अपना स्कूल खोले थे, अपना यूनिवर्सिटी था, गुरुकुल खोले थे, और बड़े कठोर नियम वाले थे, जो स्टूडेंट उनके गुरुकुल में एडमिशन होते थे उनके लिए एंट्रेंस तो बहुत टाइट था, बहुत हैवी एंट्रेंस था, आजकल के जेई एग्जाम से और कठोर। तो लेकिन मैं अब कृष्ण भगवान को पूछा, अगर ये सबसे अभी टफ यूनिवर्सिटी है वहां पे, है ना, आजकल तो IIT 10-12 है इंडिया में, तब तो एक ही था केवल उज्जैन में, है सांदीपन के गुरुकुल, वहां कोई पढ़कर आए तो माना जाएगा, उनका सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू बहुत वैल्यू था। तो बोले यहाँ हो दूर बोली है आपके सब अपरिचित, मैंने यहाँ का सांसद को मिलेंगे नहीं, कोई आपको चिढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आपको ज्यादा अपमान भी सुनना नहीं पड़ेगा, दूर सबसे अच्छा टॉप यूनिवर्सिटी आज तक दूर जा। जब यहाँ भेजने का डिसीजन हो गया तो राजा की देवी की जो खबर मिली तो उन्हें बहुत खुश हो गए कि मेरे भतीजे लगे हैं, भतीजे हैं, भतीजे को दर्शन मिलेगा, उनको हमारा घर में बुलाऊंगी, आतिथ्य करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। जिस दिन से ये डिसीजन हो गया कि कृष्ण बलराम पढ़ने के लिए जेल आएंगे, शांतिपुरी स्कूल एडमिशन लेने के लिए आएंगे, उसी दिन से खबर मिलते ही उज्जैन राजमहल में अब कोई बाकी वार्ता ही नहीं चला। स्वयं महारानी राजादि देवी तो जब उनसे मुंह से कोई बात निकली तब उन्हीं के ही गुण मिला के वर्णन, कैसे उनका रूप, कैसे गुण, कैसे पराक्रम, वह जो जो सुने सब बताते गए। यहाँ तक कि वहां से दास दासी हाट घाट बाट में जो स्त्रियां भी थी वो कोई बात छेड़ गए, बस हम तो इसे सुने ऐसे सुने, पता नहीं सही में आएंगे, हम देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन वो आए नहीं। आए एडमिशन करने के लिए कि ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी किसी घर में नहीं आएंगे, ब्रह्मचारी गृहत्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, विद्यार्थियों का सबसे पहले लक्षण गृहत्यागी, पांच लक्षण होता ना स्टूडेंट का, एक लक्षण है गृहत्यागी, घर में नहीं जाएंगे, फिर समझ के घर में कैसे जाएंगे। और उनका नियम भी बड़ा कठोर है, और जाके एंट्रेंस दिए, एंट्रेंस क्या जाके जाकर के पहले जब भेंट हुआ, दो लड़के गए थे अपने आप में, जाकर जब गुरु गृह में प्रवेश किए, गुरु जी ने उनके ऊपर दृष्टि डाले, गुरु जी गुरु माता और जितने स्टूडेंट और थे, एक झांक के सबसे पहले मिलन में, पहले भेंट में ही गुरु जी सोच लिए अगर ऐसे दो छात्र रत्न मेरा छात्र सत्य में बने का सच में बनेंगे, वो एंट्रेंस की बात तो प्रश्न ही नहीं उठा। गुरु जी सोच रहे अगर ऐसे छात्र मुझे मिल जाए, मेरा गुरुकुल धन्य हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं। माता जी यही सोचे अगर वो इन दोनों लड़कियों को सिलेक्ट कर ले, और जो स्टूडेंट सकड़े थे सारे स्टूडेंट मन में बैठ करके पोथी मथी हाथ में छोड़ करके बैठ करके सोच रहे अगर वो हमारा स्कूल वाणी से उन्हीं का साथ मित्रता करूंगा, उनके दोस्त में बन गया तो मैं तो कृत्य हो जाऊंगा, उनके साथ मित्रता करना को बोलते मैं उनका सेवा करूंगा, मैं उनका ये बन जाऊंगा। अरे मनुष्य की बात छोड़ दो, जो गौशाला में गाय बछड़े थे, जो पशु पक्षी थे, जो आसपास में पेड़ पौधे लता पता फल वृक्ष थे, वो भी सोचने लगे अगर हमारा कुछ है जीवन में तो उनकी अगर सेवा नहीं कर पाए तो है क्या। यही दो लड़के जो दो स्टूडेंट बनकर आ जाए, क्योंकि एंट्रेंस की सवाल ही नहीं था, अपने आप में घुस गए, एंटर कर गए। कोई गुरु जी को खाता पत्र प्रश्न पत्र कुछ करना नहीं पड़ा, एंटर कर गए, एंटर करके बैठ गए। और जैसे बैठे गुरु जी के सामने, ऐसा होता है कि पहले एंट्रेंस होता है, सिलेक्शन होता है, फिर उनका विधिवत एडमिशन होता है, उसके बाद में सबसे पहले विद्यारंभ में यज्ञ में दीक्षित किया जाता है, संकल्प किया जाता है, यज्ञ अग्नि को ज्योति प्रदीपन उत्तेजित किया जाता है, ज्योत करके फिर उसे सुर्याद होता। कुछ नहीं किए गए, पहला दिन गुरु जी प्रणाम कर बैठ गए यज्ञ से, आज अपने आप ज्योति हो गया, बिना मंत्र जंत्र माचिस ही नहीं लगाना पड़ा, आपने आप यज्ञ को ज्योति हो गया, सब आश्चर्य होकर देख रहे। गुरु जी पता नहीं पहले लड़के तो महीना दिन तक तो कुछ नहीं बोलते थे, वो क्या करो ये करो कितनी सेवा लाकर महीने दो महीने के बाद पाठ शुरू करते थे, आज तो बैठे ही बैठे वही पाठ शुरू कर दिए, सबने ही कौन सा पाठ शुरू कर दिए, आज तो अभी सेवा शुरू कर दी है, हम लोग बोल रहे हैं ना, उनके लिए बोल रहे हैं। और पाठ सुन दे सारे स्टूडेंट भी आज से लोग सुन रहे थे, और पाठ सुन लिए, और दूसरे दिन वो बोले कि हम पाठ सुना नहीं है, अभी एडमिशन में ठीक से नहीं पाठ सुना नहीं है, अब पाठ सुनाने के लिए खड़े हो गए। वो सब सोचे ये किया गए शर्म के लड़के, अभी एडमिशन नहीं हुआ कुछ सुना नहीं, ऐसी कुछ बोल दिए पाठ सुना नहीं आज तो आगे, और पाठ सुनाने में गुरु जी बोले ठीक ठीक बोलता है तो इतनी सुंदर रूप जिसका, इतनी सुंदर बोली जिसका, उनसे कुछ बोली सुनना जाए, आप जो परमिशन दे दिए तो बोल दिए। गुरु जी बोलते मेरा नथि पत्र में तो इतना सारे नहीं है, मैं जितना सिलेबस में उसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं, ये कोर्स तो कंप्लीट हो गया, एक महीना का कोर्स तभी कंप्लीट हो गया, तो एक एक घड़ी में एक एक महीना का कोर्स कंप्लीट करते थे। लेकिन राजमहल में उनका चर्चा चल रहा था, तो उनका चर्चा सुन करके घर में दो लड़का नहीं रहते थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो महाराजा के राज पंडित महाराज की चक्रवर्ती सम्राट के अधीनस्थ राजा थे, उनके वशवर्ती राजा थे, तो वो मर जाने के बाद में और पंडित महाराज पधार जाने के बाद में राजगद्दी आया धृतराष्ट्र के हाथ में। धृतराष्ट्र के अंग थे असली राजा वनमथे को जीवराज दुर्योधन। अब दुर्योधन का वशवर्ती हो गए उनके दो लड़के, वही पहले से उनका संबंध था विंद और अनविंद, और महाराज दुर्योधन की गुणगान करते थे हमेशा, उनके कोर्ट में बैठते थे, उनके राजसभा में बैठते थे और हमेशा उनको गुणगान करते थे। लेकिन माता राजावी देवी और घर में तो कृष्ण बलराम की गुणगान करते, मां के मुख से उनके जस पराक्रम गुण रूप को वर्णन सुन करके मित्रवृंदा छोटी उम्र से ही इतना उनके सौभाग्य थी कि भगवान के गुण गौर सुनना मिली वहां से, और जिससे भी दास दास वही गुण सुनने मिली। तो मन में बहुत विचार करते, मां को बराबर परिस्थिति, मां वो आएंगे क्या, वो दो कुमार हमारे घर में कैसे नहीं आएंगे, मेरे भाई के बेटा है, आप तो केवल ब्रह्मचारी बने हैं, समावर्तन उत्सव होने में मैं खुद जाकर हाथ पकड़ कर ले आऊंगी, ऐसे कैसे जाने देंगे, एक घर में आतिथ्य ना कर ऐसे छोड़ जाने देंगे, ऐसे नहीं, अवश्य आएंगे, अवश्य मैं लेकर आऊंगा उनको, समावर्तन उत्सव तो आने पर एडमिशन किए, क्या करे महर्षि बड़े कठोर नियम वाले हैं, वो तो किसी को मिलने भी नहीं देंगे, नो एडमिशन, कोई समझ भेज भी नहीं सकते, भेज भी नहीं कर सकता, बड़े कठोर, जो अंतर्वासी होते हैं, जो स्कूल एक बार एडमिशन करके हॉस्टल में चला गया, फिर जब तक समावर्तन नहीं होता तब तक ना घर के कोई लोग परिचित व्यक्ति बंधु वर्ग परिजन कोई बंधु वर्ग नहीं मिल सकते, कोई भेज नहीं सकते, नो करेक्शन, मोबाइल फोन तो था ही नहीं, कोई बात नहीं, तो अब क्या करते समावर्तन, तो बेटी हमेशा पूछती थी मां समावर्तन उत्सव कब होगा ना, अरे दूसरे दूसरे लड़के जो आते हैं स्टूडेंट, उनका तो किसी का 5 साल, किसका 10 साल, किसका तो 20 साल तक लग जाता है, जिनका जिसमें क्षमता है, जो जितने प्रतिभा संपन्न पारदर्शी है, जिनका जितना ग्रहण शक्ति निधा शक्ति ज्यादा है, उनको इतने साल लगता है, कम से कम 4-5 साल तो लगेगा, किस किस को 10 साल 12 साल 20 साल तक भी जाते हैं। लेकिन ये कुमार बन का ना, मैं सुना हूं मेरे भाई के बेटा जो है वो तो अपरिसीम प्रतिभा संपन्न है, वो तो असाधारण है, उनको तो लगता है 2-3 साल में तो हो ही जाएगा, उनको ज्यादा साल नहीं लगे, उनका सिलाबस से 5 साल का है, लेकिन वो इतना दिन तक नहीं रहेंगे, इतने असाधारण ज्ञानी है, और इनसे भी पहुंचे हो, क्योंकि छोटे बच्चे तो हो भी नहीं, और तो 12 साल के हो गए, जीवन का अवस्था आ चुका है, किशोर अवस्था हो चुका है, तो अभी समझदारी बन चुका है, अब जल्दी 2-3 साल में सिलाबस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और चिंता मत करो, बेटी बहुत उत्साह से थी कि 2-3 साल में समावर्तन हो जाएगा और हमारा घर में आएंगे, मैं उनका सेवा करूंगी, उनके ये करूंगी, दर्शन करूंगी, विचार में थी। अरे उन्हीं से जब से जिस दिन से गुरुकुल में आने से उसी दिन से घर को सजाना, राजा माता राजा जी तो स्वयं आप हाथ से बैठ बैठ कर समय निकाल करके उनके लिए पोशाक बनाने लगी, उनके लिए बनाने लगी, अहंकार बनाने लगे, ऑर्डर दे करके कैसे पहनेंगे, क्या खड़ा बनेंगे, क्या करेंगे, ब्रह्मचारी थोड़ी जाएंगे, ब्रह्मचारी समावर्तन हो जाएगा, आप तो बनेंगे राजपुत्र बनकर जाएंगे, सबसे पहले कपड़ा तो मैं पहनाऊंगी, सबसे खाना मैंने खिलाऊंगी, और उसी से व्यवस्था से लग पड़ी। अब खबर मिला, अति आश्चर्य की बात, सबको आश्चर्य हो गए, 2-3 साल के बाद दूर है, 2 महीना पूरा हो गया, 3रा महीने के शुरुआत नहीं हुआ, खबर मिला कि आज कृष्ण बलराम के समावर्तन उत्सव हो जा रहा है। अरे ये कैसा होता, 2 महीने गुरु माता स्वामी पन्नी की पत्नी आकर के बोलती है, आप कैसे हैं, इतने निष्ठुर हैं, इतने अच्छे लड़के को आप भी कुछ प्रेम को सुनी पे है, स्वामी पन्नी बोलते हैं कि रे पागली, मैं कैसे बुद्धि करूंगा उनको छोड़ने के लिए, जिनको देख करके आंख से पलक नहीं गिरता, जिनके पास बैठ करके उठने के लिए मन नहीं करता, जिनके साथ वार्तालाप करने से जीवन रोके नहीं रुकता, उनको छोड़ने के लिए मैं कैसे इसे प्रबुद्धि करूंगा, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो एक शिक्षक हूं, शिक्षक का तो एक नियम होता है, एक आदर्श होता है, जितना शिक्षा जितनी सिलावर्ष जितना कोर्स है इतना तक पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, उसके पढ़ जाने के बाद उससे समर्थ हो जाने के बाद फिर उनकी ज्यादा समय नहीं रख सकता मैंने, तो पारदर्शी हो जाते हैं तो हायर स्टडी के लिए और कहीं जाए कि कुछ करें, फिर उनकी ज्यादा समय रिटेन करना तो मेरा बस की बात नहीं, किस रिटेन कर सकते, और मैं क्या करूं,
मैंने खुद भी इतना जल्दी नहीं पढ़ पाया था कि जिन्होंने ये शास्त्र की रचना की वो भी इतना जल्दी नहीं पढ़ पाया था। अरे शास्त्र रचना करावी क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम कोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेह चाहं वेदांतकृत यही हूं। सारे वेद शास्त्र को बनाने वाला भी यही है, वेद शास्त्र के द्वारा जानने वाला भी यही है, करने कराने वाला तो यही है। बेचारे क्या करे, सब नाटक कर रहे हैं, अपने रोल अपने निभा रहे हैं, तो वो भी दुख दुख करके बोले मैं क्या कर सकता हूँ, वही बाध्य हूँ समावर्तन करने के लिए। इतनी जल्दी फास्ट कोर्स कंप्लीट करती हूँ, क्या करूं। पूरी संसार भर में 64 प्रकार के विद्या है, मैं बड़े मुश्किल से भगवान विश्वनाथ की कृपा से इसको प्राप्त किया था। कोई यूनिवर्सिटी में भी इतना कोर्स नहीं पढ़ा पाए, केवल उनके अहत की कृपा से मैं भट को शास्त्र को प्राप्त किया था। लेकिन क्या करो, दिन ही नहीं लगा, 64 दिन भी नहीं, उससे कम समय में पूरा पूरा कर डाले। और मेरे से ज्यादा पारंगत, कोई वेद कोई कला कोई शास्त्र बाकी नहीं रहा। मैं कैसे रोक सकूं उनको समावर्तन करने के लिए, बाध्य हूं, मैं नहीं चाहते, वो क्या करूं। गुरु माता वीरेंद्र लगे हाय हाय, हम सोचते थे कुछ दिन उनके साहचर्य मिलेगा, लेकिन इतने जल्दी ही ये विधि इतने निष्ठुर है, इतने जल्दी हमसे अलग हो जाएंगे। सारे अंतवासी छात्रगण हॉस्टल के जितने उनके क्लासमेट थे सब रो रहे हैं, पशु पक्षी गो बछड़े वृक्ष लता सब रो रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे विच्छेद हो जाएगा। लेकिन गुरुकुल में समावर्तोत्सव से पहले ही शोक उत्सव शुरू हो गया। लेकिन एक खबर जब बाहर निकला पूरे नगर में, पूरे अवंत राज्य में, जन जन में आगे उनके चर्चा खेल गया। बड़े बड़े सेठ साहूकार जिनके पास जो भी थोड़ा बहुत धन था, रुपया पैसा संचय करके रखे थे बैंक में, सब अजूट्र कर लिए। अरे किसके लिए रखें, अगर भेंट देना पे आज उन्दन कुमार को दूंगे, आज ब्राह्मण वेश से उन्हें राजकुमार वेश को प्राप्त करेंगे, आज उनको वेश पोषा भेंट उनको देने से हमारा अर्थ का सार्थक होगा, इसलिए लाइन करके सब खड़े हैं, हम ये देंगे हम। रानी तो बोले किसी का नहीं, सब बोले मेरा है, मेरे भतीजे नहीं दूंगा सब। और क्या क्या ना जाने लेकर सब आए थे, कितने धन रत्न पोशाक क्या क्या सामान ला कर, सैकड़ों हजारों लोग लाइन में खड़े थे। और समावर्तन जो उसको कहते हैं अवृत स्नान, इसलिए आज भी जो ग्रेजुएशन होता था ना, ग्रेजुएशन को हिंदी में क्या बोलते जानते हैं, स्नातक स्नातकोत्तर, स्नान में स्नान करके उतरने का शब्द कहते हैं स्नातकोत्तर, स्नान करके उतरा, स्नातकोत्तर का सही हिंदी भाषा अनुवाद क्या है, स्नान के उपरांत, यस स्नातकोत्तर। तो मतलब किस विषय पर आप स्नान कर चुके हैं, स्नातक हो चुका है, मतलब कुछ विशेष विषय में विशेष तरीका से ज्ञान अर्जन कंप्लीट करने के बाद पूर्णाहुति मतलब स्नान करना पड़ता है, यज्ञ में हवन में क्रिया में संकल्प में स्नान करना, स्नान करने से पूर्ण होता है अवृत स्नान। तो स्नान करने के बाद स्नातक तर उपाधि मिलता है, स्नातक हो चुके हैं, ये सर्टिफिकेट इशू होता है। तो स्नान कर लिए उन्होंने, अवृत स्नान दोनों भाई कर लिए, स्नान करके जैसे बाहर निकले तो भीड़ के समूह पूरा राजवासी बैठे देखने के लिए, बाहर निकले वहां से रोते रोते गुरुकुल के अंतवासी सब निकले, गुरु माता गुरुदेव भी निकले, सरिया का टाइम हो क्या ज्यादा रखे, बाकी बाद में करे, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर कंप्लीट, ये के कंप्लीट होगा भगवत हरि अनंत हरि कथा आनंद है ना, ये तो जुड़ते जाएगा बढ़ते जाएगा है ना। तो इतनी शॉर्टकट में कह देता हूं कि कृष्ण बलराम एक रात के अतिथि स्वीकार किए थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। एक रात की अतिथि स्वीकार किए राजेंद्र देव का राजभवन में, और उसी दिन मित्र वृंदा बेटी को राजकुमारी को उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुई। वो एक बार एक झांकी उनको देखी तो देखी वो आंख, उनका हृदय, उनका मन, उनका बुद्धि उन्हीं में रह गई। उसी समय से उनके हृदय
उनको ही दे दी, उनका होकर के रह गया। अब मन में केवल यही विचार समा गया, उसी समाधि में रह गई। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ गई, किशोरी हो गई, विवाह की वयस आया और दोनों भाई दुर्योधन के राइट लेफ्ट हैंड है, और तो बोले सुयोधन हो, दुर्योधन नहीं बोलते सुयोधन, राजा विराज हस्तिनापुर सम्राट सुयोधन के साथ हमारा बहन का अगर संबंध हो जाए, हस्तिनापुर के महारानी हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या और सम्मान की बात होगा, इतनी बड़ी बात। तो सुयोधन को लेकिन इसने प्रस्ताव कैसे दें कि हमारा बेटी के हाथ आप ले ले। दुर्योधन तो बहुत बड़े कुरुवंश के राजा है और उज्जैन के बहुत छोटे राजा है, उनके कर्म राज्य है, ये प्रस्ताव देने में उनको शर्म आ रहा था, उनको उपहास न हो जाए कुरु राजसभा में, इसलिए शर्म के मारे ये प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक दिन गए छुट्टी एप्लीकेशन लेकर के, राजा राज सुयोधन हम लोग को छुट्टी चाहिए 15-20 दिन महीना के, किस लिए न बहन का स्वयंवर सभा का आयोजन करना होगा, बहन विवाह के लायक हो गई। अच्छा आप स्वयंवर करेंगे, मैं भी आऊंगा स्वयंवर, सब कुछ ना, हाँ हाँ आप आए थे, हो भाग्य है आप, आपको आकर गेट से कहां से वेलकम करेंगे, ग्वालियर से दिल्ली शहर से रास्ता को ना, ग्वालियर से बिल्कुल यहां से वेलकम करेंगे आपको, गेट बनाएंगे वेलकम करेंगे आपको, सुधरना नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगा, सब जाऊंगा ना, हाँ सबसे। और सारे को इन्विटेशन दिया गया, हजारों संख्या में राजकुमार आए थे। स्वयंवर, स्वयंवर सभा का अर्थ ही होता है स्वयं वर को चुनना, ऐसे कोई वाद विवाद नहीं, राजकुमार के हाथ में वरमाल्य दे दिया जाएगा, वो अपने विचार से जिसको चुनेगी, जिसके गले में वरमाल्य, स्वयंवर को चुनेगी, वही व्यवस्था। तो लेकिन दोनों भाई ने द्वारका के निमंत्रण नहीं दे देते, लेकिन राजा देवल कैसे नहीं होगा, मेरे भतीजा उनको तो बुलाना पड़ेगा, स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया और वासुदेव भी आए। जैसे वो आए, बाकी जितने राजा सब इन्वाइटेड आए, जैसे बैठे थे मंच में सैकड़ों हजारों बैठे थे, दुर्योधन को जहां से राजकुमारी बैठी थी, जो रास्ते में आएगी मान लो कि बिल्कुल वही रास्ता पर बैठी थी, रास्ता पर बैठा था कि वही गेट पर वाला हो जाए। तो लेकिन वासुदेव जब बाकी जितने राजकुमार आए थे, सब मुंह सुखाकर बैठ गए। अब भगवान कृष्ण स्वयं वासुदेव जी से सभा में बैठे, कोई कौन ऐसे कुमारी कन्या होगा जो वरमाल्य फिर उनको छोड़कर और किसी गला में डालेगा, ऐसी दुर्भाग्यवती देखो हो नहीं सकती किसी प्रकार से अन्य अच्छा भी ले, अनकंपेरेबल है। तो कहे तो हम आए, जो आए तो आए रास्ता खर्च करके, अभी केवल शादी का फिस्ट खाए और दर्शक बनकर जाए और क्या करें, केवल देखेंगे शादी होगा फिर खाने जाएंगे, और तो अपना तो वर बनने का इच्छा छोड़ी दो, कपड़ी खत्म करो, जाए अटेंड करके जाए बस, मेरा दर्शक बन करके खा पी कर चले जाना, टिकट बुकिंग रिटर्न कर लो फटाफट, आगे क्या जाना, ये क्या करो, काम नहीं बनेगा, जो वो आ गए और तो किसी का सिलेक्शन की बात ही नहीं, ना इलेक्शन होगा ना सिलेक्शन होगा, हो गया। लेकिन उन दोनों भाई तो वो चाहते थे कि सुयोधन के गला माला डाले, लेकिन माला जब देसे और उनको पता चला भगवान कृष्ण अगर बैठे, वो ढूंढी ढूंढ करके आपने हृदय सर के पास माला लेकर से चली, तो वो दो भाई बोले नहीं 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 इधर नहीं उधर 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 चलो, लेकिन वो कहे को जाए इधर, वो तो बोलते आप रास्ता छोड़ो, ये क्या है स्वयंवर सभा आपकी जबरदस्ती करते, रास्ता छोड़ो, नहीं हस्तिनापुर सम्राट वही बैठे, मारो तो हस्तिनापुर सम्राट, तो उनकी तरफ क्यों जाऊंगा कई राजकुमार तो तलवार खींच लिए, ये कैसे है, अगर उनको बुलाकर शादी देना था तो देना था, ये स्वयंवर सभा क्यों मिला है, मैं हमको हंसा, हमको हंसाने के लिए मजाक करने के लिए मजाक करा, उनको अकेले बुलाकर शादी दे देते चुपचाप, हमको क्यों लेट किए, हम आकर बैठे जैसे बढ़िया बनकर जाएंगे, उनको माना डाले देखते ही देखते बनकर जाएंगे, ये कैसे है, तलवार उठा लिए, गंडबल शुरू हो गया, भगवान ने चुप से उठे, उठ करके आकर मित्र विनायक को चलो मेरे साथ ले करके रथ में उठे, हो हल्ला करते करते वरुण ध्वज रात जा चुकी थी, और देखते देखते कुछ आए नहीं, क्या कर दास होकर के सो गए। तो भगवान ने स्वयं आकर के मित्र विनायक को जबरदस्ती हटा कर ले गई, राजी खुशी में ले गई, किसे पता नहीं चले, उनके स्वप्न सार्थक हो गए। हरे कृष्ण।
कृष्ण भगवान की सर्वोपरिंद की।
Thank you.